سلام محترمہ.
سلام.
یہ لیجیے.
آپ مطمئن ہیں کہ آپ صحیح جگہ لائے ہیں؟
کیا آپ مسز مائدہ فاتحی نہیں ہیں؟
جی
میں صحیح آیا ہوں. مہربانی کر کے یہاں دستخط کر دیں. شکریہ. خدا حافظ.
آپ کی مہربانی.
سلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں ہاں جی میں عرض کر رہا تھا جب شہیدی صاحب نے مسجد کا امام بننے سے انکار کر دیا تو میں نے سوچا ایسے عالم دین کو دعوت دینی چاہیے جو یقیناً بازار کی مسجد کے لیے مناسب ہو.
لیکن کاش آغا صاحب قبول کر لیتے.
معاف کیجیے گا میرزائی صاحب, جب حاجی فلاح صاحب نے مسجد کو وقف کیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ حاجی شہیدی صاحب اس مسجد کے متولی اور سرپرست ہوں گے.
جی ہاں لیکن انہوں نے مانا نہیں. میں نے بھی ایک عالم دین سے بات کی ہے کہ ایک مہینے کے لیے زحمت قبول کرے.
کیا مدرسے کا کوئی طالب علم ہے؟
میں نے معاملے کے تبلیغی پہلوؤں پر بہت سوچا, کچھ لوگوں سے مشورہ بھی کیا. میں نے سوچا کہ ہمیں ایسے شخص کو دعوت دینی چاہیے جس کی خبر بم دھماکے کی طرح شہر کو لرزا کے رکھتے. میں نے یہاں تک سوچا کہ صوبائی چینل والوں کو بولوں کہ ان کی تقریریں نشر کریں.
ہمیں بڑا اشتیاق ہو رہا ہے, کیا آپ ان کا نام نہیں بتائیں گے؟
اتفاق سے وہ بہت مصروف ہیں. لیکن جب میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس مسجد کو علاقے کے مذہبی ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیں گے تو انہوں نے قبول کر لیا. چنانچہ ہم ماہ محرم کے آخر تک ان کی خدمت میں حاضر رہیں گے.
کیا یہ 20 سوال والی بات ہے میرزائی صاحب؟ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟
جب تک آپ اپنا شربت پیئیں گے میں بتاؤں گا کہ وہ کب تک آئیں گے.
میرے عزیز دوست, اگر آپ چاہتے ہیں نماز کو فارسی میں پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس سلسلے میں کئی سوالات پائے جاتے ہیں, اگر آپ ان کے جواب دے سکتے ہیں تو دے دیں, میں بھی آج سے نماز فارسی میں پڑھ لوں گا.
آپ کی طبیعت ٹھیک ہے مرزائی صاحب؟
اگر خدا نے چاہا تو مہدوی صاحب نے تشریف لانے کی حامی بھر دی.
عزیز دوست ذرا یہ بتا دیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ کس طرح کریں گے؟ بسم کا ترجمہ نام کرنے میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے, لیکن لفظ اللہ کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خداوند عالم کا اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. لفظ اللہ اسم خاص ہے جس کو مسلمان خداوند عالم کی ذات پر اطلاق کرتے ہیں, بالکل یہودیوں کی طرح جو خداوند متعال کو یہوہ کہتے ہیں اور زردشتی اہورا مزدہ کہہ کر پکارتے ہیں. اچھا رحمان کا کیا ترجمہ کریں گے آپ, اور رحیم کا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ بخشنے والا اور مہربان. رحمان و رحیم کے علاوہ کون سا لفظ نہایت بخشندگی, بہت زیادہ بخشندگی اور مہربانی کے معنی کو ادا کر سکتا ہے؟ یہاں پر رحمان کے لفظ میں خداوند عالم کی بخشندگی پورے عالم ہستی پر محیط ہے, نہ صرف مسلمانوں پر اور نہ ہی صرف کفار پر.
یہ حاجی صاحب کیسے وقت نکال کر یہاں آئیں گے؟
بہرحال میں نے التجا کی اور انہوں نے بھی مان لیا.
جناب آپ نے بہت محنت کی,
یہ آپ کا حسن نظر ہے.
تو یہ مہدوی صاحب آئیں گے کب؟
انہی 2-3 دنوں کے اندر آ جائیں گے. میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ ایک مناسب سویٹ ان کے لیے ڈھونڈ لیں, کیونکہ جب تک وہ یہاں پر رہیں گے اسی سویٹ میں رہیں گے.
مسعود ٹھیک ہو گیا؟
بہت بہت شکریہ.
ارے واہ آرش خان, کیا حال ہیں؟
سلام عزیز, ٹھیک ہو؟
یہاں پر کیسے؟
मैं इंतजार कर रहा हूँ अबू मीटिंग में। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।
क्या खबर?
लोन का फॉर्म लाया हूँ अबू के दस्तखत के लिए।
तो फिर यहाँ क्यों हो? उनके पास चले जाओ।
मैं डर गया कहीं अबू मेरी बेइज्जती ना कर दें।
लोन कितने का है?
कुछ नहीं, तकरीबन 500 मिलियन।
500 मिलियन? कभी उसकी किस्तें नहीं दे सकते।
अगर तुम मायूस ना करो तो शायद दे पाएं।
जो लोन लेता है ना उसके काम में कुछ गड़बड़ी होती है।
क्या मतलब? लोन लेने वाला बदनसीब और बेचारा होता है?
या वो बदनसीब है जो 10 कौड़ियों का मोहताज है, या हालत बहुत अच्छी है और अरबों में खेल रहा है और वापस करने का इरादा नहीं रखता।
इस तरह की बेहुदा बातें मत करो, मुझे मायूस भी ना करो। हम लोन भी लेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक हो जाएगा
इंशाल्लाह। अगर मेरी राय मानो तो प्रोजेक्ट किसी के हवाले करके खुद को छुटकारा दिलाओ, वो जारी रखे। तुमने तो अपना मुनाफा हासिल कर लिया, क्यों? इस तरह तुम्हारी परेशानियां भी कम हो जाएंगी।
तुम जो इतनी अच्छी तकरीर कर लेते हो, थोड़ा अपने भाई को भी नसीहत कर दो।
भले आदमी, मेरे भाई ने तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है।
हाँ, पहुँचा दिया है। हमारे पास जो भी पैसे थे उसने हड़प लिए, फिर 2 महीने देर से पैसे लेने को तैयार ही नहीं हुआ।
हाँ, हिसाब अपनी जगह, भाई अपनी जगह।
अरे भाई मजीद साहब, हम इंशाल्लाह पैसे की आखिरी किस्त दे देंगे, फिर अपने प्रोजेक्ट को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आप भी मेहरबानी करके भेजा बातें ना करें।
तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैंने ये बातें तुमसे की है।
हाँ पता है। हेलो, आप नुमा प्रोजेक्ट की डायरेक्टर, मेरी खालाजाद बहन को सलाम। कहाँ? वर्कशॉप? ठीक है ठीक है, 40 मिनट के बाद आता हूँ, कुछ काम है करके आऊंगा।
सलाम।
सलाम खालाजाद बहन, आप और इधर?
जब से मॉडल का काम खत्म हुआ है घर में बैठकर बोर हो गई हूँ, मैंने सोचा यहाँ आ जाऊँ ताकि तुम लोगों की मदद करूँ। मोहम्मद हुसैन भी अकेला पड़ गया है।
लगता तो ऐसा है हमारी कोई हैसियत ही नहीं है।
रहने दो अपनी जगह पर।
यहाँ भी तो कोई मसला नहीं है, वर्कशॉप अपना काम कर रहा है, मजदूर अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है।
संजीदगी से बात करो, तुम लोग इस कंपनी में कर क्या रहे हो?
हम जो अपने तामीराती काम कर रहे हैं उसके साथ मनुष्यात की पैदावार और तकसीम का भी काम कर रहे हैं।
आरश,
और हम क्या कर रहे हैं हमारी खालाजाद
बहन? क्या तुम्हें इस कंपनी में कोई परेशानी है, कोई मसला नहीं है?
जैसे कि कैसा मसला?
मुझे क्या पता। क्या तुम पर किसी का उधार नहीं है? क्या सभी चेक मौके पर कैश हो जाते हैं? ये जमीनों के हैसियत की तब्दीली का मसला क्या है?
ये आखिरी वाली बात का मुझे पता नहीं है, क्या है ये?
इस बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो चलो वही बताओ।
अगर मोहम्मद हुसैन को पता चला कि मैंने इस मामले में आपसे कोई बात की है तो वो मेरी खाल उधेड़ देगा।
बहुत अच्छा, तो फिर मैं भी उनसे कह दूंगी कि तुमने कहा है कि अपनी अम्मी से तुम लोगों के लिए पैसे उधार।
छोड़ो, जाने दो ना। हकीकत ये है कि हमारी कंपनी का बैलेंस 0 ही 0 है।
क्यों?
उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो हमने मुरादी साहब से किया है, लोगों से जो हमने पैसे जमीनों की मद में लिए हैं उनके 60% को 4 किस्तों में मुरादी साहब को अदा करना चाहिए था, अभी सिर्फ 3 ही दिए हैं, जबकि बचे 40% से हम एक वर्कशॉप का काम भी नहीं चला सकते।
इसका क्या मतलब?
मतलब ये कि हमें पहले लोन लेना पड़ेगा फिर आगे कामों को बढ़ाना पड़ेगा।
अगर लोन का बंदोबस्त ना हो सका तो?
हो जाएगा ना, हम उसके कामों को निपटा रहे हैं। ये देखो, आज मैं ये पेपर्स अपने अब्बू के पास ले गया था, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, इंशाल्लाह हम ये सारा काम निपटा देंगे। अरे भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग?
मैदा इधर आओ, देखो ये भी है, तुम पसंद कर लो। तुमने कंपनी की बागडोर मेरे हवाले की है, मैं इसको आखिर तक 4 पाँव पर दौड़ा कर ले जाऊंगा ना।
मेरा मतलब एक छोटी कंपनी के 4 पाँव के साथ दौड़ना है।
बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम नई रोशनी पैदा करेंगे। मैदा, मैं कुछ कहता हूँ तो मेरी हौसला शिकनी कर देती हो।
मोहम्मद हुसैन मेरी जान, सिर्फ जरा आराम से।
मैदा, तुम्हें मालूम अगर हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सके तो हमारी कंपनी को कितना एतबार हासिल होगा?
मसला यहीं पर है ना, क्यों हमें उन कंपनियों की नकल उतारनी चाहिए जो कई वर्षों से काम के तजुर्बे के हामिल है?
इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जो मौका हमें मिला है उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करूँ। ये तो बुरी बात नहीं है। ये तुम्हें क्या हो गया है मैदा?
मोहम्मद हुसैन, मैं एहसास कर रही हूँ कि मामला पे मेरा ज्यादा अमलो दखल होना चाहिए, यानी कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे सही तौर से जान लेना चाहिए कि मैं किस चीज पे दस्तखत कर रही हूँ।
ठीक है, जान लो, लेकिन इसका मतलब है कि अब तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है।
क्यों नहीं, जब तक मुझे यकीन ना हो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे। मोहम्मद हुसैन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हो?
नहीं, मेरे पास क्या है जो मैं तुमसे छुपाना चाहता हूँ। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मायदा, क्यों सता रही हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ कोई भी इत्तफाक हो वह पहली फर्द तुम होगी जिसको मालूम हो जाएगा, यकीन करो।
तुम मुतमईन हो?
बिल्कुल मुतमईन हूँ, तुम भी मुतमईन रहो। क्या मैं तुमसे एक दरखास्त कर सकता हूँ?
क्या?
कि तुम अपने मुलाजिम को यह एहसास बख्शो और आज दोपहर का खाना मेरे साथ खा लो।
मेरा दिल नहीं कर रहा।
वादा करता हूँ अच्छा वक्त गुजरेगा।
मैंने अम्मी को टाइम दे रखा है, मुझे उनके साथ एक अहम मसले पे बात करनी है। मुझसे कोई काम तो नहीं? खुदा हाफिज।
क्यों खुद मोहम्मद हुसैन से नहीं पूछती हो?
वो खुद तो मुझे किसी चीज के बारे में बताते नहीं, और मुझे भी बार बार उनसे पूछते रहना अच्छा नहीं लगता।
क्या मतलब है? तुम इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, नोटिस तुम्हारे नाम पर आया है, फिर भी ये पूछना अच्छा नहीं लगता कि मामला क्या
नहीं,
है?
मुझे उनकी झूठी बातों का पोल खोलना अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से उनकी परेशानियां हल हो जाएं। क्यों?
किस बुनियाद पे तुम ये बात कह रही हो?
क्योंकि आरिश कहता है शायद कुछ दिनों के बाद उनको लोन मिल जाएगा।
ये नोटिस इंस्पेक्शन के इदारे की तरफ से आया है, इसका कर्जे के हुसूल से क्या ताल्लुक है?
आरश मेरे बारे में क्या सोचेगा जब तुम यह काम करोगी?
आरश मेरा खालाजाद है, कोई अजनबी नहीं।
बिल्कुल खालाजाद है, लेकिन मेरा कलीग भी है, समझी? जब तुम जाकर उससे इस तरह की बातें उगलवाओगी तो मेरी तहकीर होगी, पता है तुम्हें इस बात का?
अरे ठीक है, मैं अब उससे कुछ नहीं पूछूंगी।
ठीक क्या है, तुमने मेरी बेइज्जती कर ही दी। ये बताओ तुम्हें हो क्या गया है?
तुम्हें खुद पता है कि मुझे क्या हुआ है।
मुझे कैसे पता कि तुम्हें क्या हुआ?
पहले तुम अपने कामों को देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा मुझे क्या हुआ है।
यकीन करो मैं नहीं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। ऐसा तो नहीं कि कल की वजह से नाराज हो? मैंने तुमसे कहा था कि मेरी चेक वाली कमीज को क्यों इस्त्री नहीं किया है। मैदा इस बात के जरिए तुम हमारी जाती जिंदगी के मसाइल को बीच में ला रही हो, तुम मुझे गुस्सा दिला करके मेरे आसाब को खराब कर
रही हो। मैंने अर्श से इसलिए पूछा क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे गलत काम।
अरे कौन से गलत काम भाई?
ये इतने कर्जे जो सर पर लाद दिए हैं, वो केस जो जमीन के इस्तेमाल के हैसियत तब्दील करने के बारे में क्या गया, उसका क्या?
मैदा अरे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, ठहरो ना। तुमने अपनी अम्मी को भी कुछ बताया है? मैदा तुम बिला वजह इस मसले को बड़ा बना रही हो। ये मसला बड़ा है नहीं, लेकिन तुम बड़ा बना रही हो। मैं जाकर खुद मसले को हल कर लूंगा एक दो दिन में।
मोहम्मद हुसैन, जब कार्रवाई का सिलसिला खत्म हो जाए तो तुम झूठ।
मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है।
हो गया, तुम दोनों को सड़क पे निकल जाओ, शोरगुल करो।
सलाम।
सलाम, ये क्या है?
तुमने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई?
वजाहत करना नहीं चाहते हो ना?
इस केस में एक छोटा सा मसला है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक मुरादी साहब से, वही जिनसे हमने जमीनें खरीदी थी। मादा जानती है इस बात को। मैं खुद इन्हीं एक दो दिनों में जाकर इस मसले को हल कर लूंगा। इसके लिए इतना सारा?
मोहम्मद हुसैन, अगर ये इतना सादा मसला है तो नोटिस क्यों आया?
मैंने कहा ना कि वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ से तसाहुल बरता गया। जमीन के इस्तेमाल की तब्दीली के केस में कुछ डॉक्यूमेंटेशन की खामी पाई जाती है। मैं उसका गिरेबान पकड़ कर ले जाता हूँ उसको।
मायदा मुश्किल में आ जाएगी।
हो सकता है वो ना आए। मायदा हमने अभी उसकी जमीन की आखिरी किस्त अदा नहीं की है। माफ करो, मुझे ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए था। उठो, तैयार हो जाओ, चलो घर चले।
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यही रहूंगी।
मायदा मैंने कहा ना कि मामले को ठीक कर लूंगा मैं।
जाओ ठीक कर लो।
उठो मायदा, तैयार हो जाओ, घर चले, मेरा काम भी आज जल्दी खत्म हो जाएगा। उठो।
अगर तुम्हारा काम जल्द खत्म हो जाएगा तो जाकर मुरादी के साथ अपने मसाइल को हल करो। मैं खुद मायदा को भेज दूंगी, वो आ जाएगी। मायदा कुछ दिन यहाँ रहे तो उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी।
जी, खुदा हाफिज़।
वो बनफ्शे के फूल वाला हेयर स्लाइड मैंने तुम्हारी खाला जोहरा से छीन लिया था। एक दिन मैं स्कूल में अपनी टीचर की तस्वीर बोर्ड पर बना रही थी, एक बड़ी नाक और प्याले के पेंदे की तरह की ऐनक, एकदम मैंने मुड़ के देखा तो वो मेरे पीछे खड़ी थी। टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। जोहरा ने जब ये सुना तो जाके अम्मी को ये बात बता दी। मैंने भी उनको चिढ़ाने के लिए हेयर स्लाइड को उठा लिया। भाई तुम्हें पता है वो उनके लिए जान से ज्यादा अजीज था, तो उन्होंने कहा कि वो खुद ठीक कर देंगी, मैं परेशान न हूँ।
क्या आप वाकई ऐसा सोचती हैं कि इस तरह मसला हल हो जाएगा?
अब तुम इस पर एतमाद करने पर मजबूर हो। इतनी ज्यादा चाय मत पियो, नकाहत पैदा होगी। इससे पहले कि तुम ये बेवकूफी करती, तुम्हें इस बात के बारे में भी सोच लेना चाहिए था।
कैसी बेवकूफी?
कौन अकलमंद लड़की है जो अपना सब कुछ अपने खावन के नाम करती है?
उसको कंपनी चलाने के लिए सरमाए की जरूरत थी।
हाँ, लेकिन एक औरत को कई बार कुछ चीजें अपने लिए बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खुद एतमादी में इजाफा होता है। मैं अगर तुम्हारी तरह होती तो सईद के बाद मैं बेचारी हो जाती।
उस वक्त मुझे ये बातें कौन समझाता? एक दादी थी जिनकी नजर में दुनिया के माल की कोई हैसियत ही नहीं थी, और कोई दूसरी औरत भी मेरे आसपास नहीं थी जो मुझे सारी बातें बताती।
अब ये बात जो मैंने कही है कुल्ली उसूल है। शायद मोहम्मद हुसैन कुछ कर सके, मैं देखती हूँ वो क्या करता है।
मेरा दिल घबरा रहा है।
क्या कहा?
मेरी तबीयत खराब है।
उठो उठो, तैयार हो जाओ।
कहा?
उठो तो सही।
तुम ईरान कब वापस आई?
कुछ अरसा हुआ वापस आए।
क्या सोच सकती थी मैं यहाँ मिलूंगी?
ये मिसेस मकसूदी जिसको देख रही हो, इसी हाई स्कूल के जमाने में भी हर एक को अपने की एक ही सजा देना उनकी आदत थी।
होदा, अपनी बेटी के सामने मेरी इज्जत मत खराब करो।
मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी।
आओ बैठो, तुम दोनों तो आपस में बहने लगती हो, माँ बेटी तो लगती ही नहीं हो।
तो तुम बता सकती हो कि नोटिस का मामला क्या है?
मैं ये समझ नहीं पा रही कि तुम्हारा दामाद क्यों नहीं चाहता कि मायदा हालात से बाखबर हो।
क्या हो सकता है कि आप मसले को वाज़े तौर पर मेरे लिए बयान करें?
आपनुमा कंपनी ने मकानात की तामीर के प्रोजेक्ट के लिए जमीनें हमीद मुरादी से खरीदी हैं। उनका एग्रीमेंट भी इस तरह था कि 4 मरहलों में खरीदारों की तरफ से अदा की जाने वाली रकम से दरियाफ्त करें। यानी आपनुमा कंपनी अपने खरीदारों से हासिल करने वाले पैसे के 60% मुरादी साहब को देने थे।
तो इसका हैसियत की तब्दीली के कानून की खिलाफ वर्जी का क्या रब्त है?
मतलब ये है कि मुरादी साहब रिश्वत देकर आराजी के इस्तेमाल की हैसियत तब्दील करवा लेते थे।
बीच में मायदा का क्या किरदार है?
मैंने तुम्हारे दामाद के रवैये से अंदाजा लगाया है कि मायदा को कंपनी में पेश आने वाले किसी भी वाक्य से इत्तला नहीं है, और बुरा ना माना, ये सिर्फ दस्तखत करने वाली मशीन है।
तुम्हें इस बात का इल्म होते हुए केस को अदालत भिजवा रही?
इसलिए कि मोहम्मद हुसैन साहब एक मर्तबा भी यहाँ नहीं आए मेरे सवाल के जवाब देने के लिए। वो हमेशा ऊंची हैसियत से बात करते थे जैसे उनको कुछ भी नहीं हो सकता।
मायदा अदालत जाएगी तो उसके साथ क्या होगा?
वहाँ इन्हें जज के सवाल का जवाब देना होगा।
बाद में क्या होगा?
मुरादी को गिरफ्तार करना होगा।
क्यों? मुरादी साहब तो अच्छे आदमी है, मिर्जाई साहब के दोस्तों में से हैं।
ये कोई दलील नहीं है कि वो अच्छे आदमी है। हेलो, सलाम मेरी बेटी। जी मैं तुम्हारी वारी, तुम अपना होमवर्क कर लो, मैं घर आती हूँ। साथ पार्क चलते हैं? शाबाश, खुदा हाफिज। माफ करना, मैं कह रही थी अगर हम मुरादी जैसे 4 अफराद की दुम कुतरवा देंगे तो बड़ी मुछलियों की करतूतों का भी पता चल जाएगा। मायदा जान तुम फिक्र ना करो, अपनी शौहर को कहो यहाँ आए, हम लोग बात करेंगे, इंशाल्लाह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा।
तो फिर उनके प्रोजेक्ट का क्या बनेगा?
प्रोजेक्ट तो आज जब्त हो रहा है।
मतलब ये कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो?
खुदा जान, तुम्हारा दामाद लाइसेंस के बगैर जरई जमीनों पर घर तामीर कर रहा है, तुम कैसी तवक्को रखती हो?
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आईने में देखो, आईने में आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं गाड़ी चलाऊं?
नहीं, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी।
तुम्हें यकीन है कि मोहम्मद हुसैन ने जानबूझकर तुम्हें नहीं फंसाया?
कि क्या हो?
ताकि वो खुद फंस ना जाए।
मोहम्मद हुसैन मकाम पसंद तो है लेकिन बदफितरत नहीं है। मेरे अबू में 1000 बुराइयां थी, शक के मिजाज और बदगुमान भी थे, लेकिन आपको धोखा तो नहीं दिया उन्होंने, आपकी दौलत तो नहीं लूटी?
मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मोहम्मद हुसैन अच्छा लड़का है।
मेरी सारी नाराजगी उसके खुफिया कामों से है। मैं ये जानना चाहती हूँ वो क्यों मुझे अपने महरम में राज नहीं समझता, वो मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है?
उसने किसी से कहा भी नहीं है, वाकई खुदार आदमी है।
अब्बा हुजूर और अम्मी जान को मालूम हो जाए कि मोहम्मद हुसैन ने क्या गुल खिलाया है तो दोनों को दिल का दौरा पड़
जाएगा। मेरे ख्याल में जिस तरह भी हो सके उनको किसी तरीके से इशारतन बता देना चाहिए।
अरे भाई मुझे क्या पता, हो सकता है जब्ती का ये पेपर जाली हो।
पेपर पर जज के दस्तखत है, देख लो।
अरे दस्तखत का क्या है, मैं तुम्हारे सामने 100 बार दस्तखत कर देता हूँ।
अरे भाई मुझसे बहस मत करो, तुम कोर्ट जाओ, सब पता चल जाएगा।
आपकी बड़ी मेहरबानी मिसेज मकसूदी, बिलाखिर आपने अपना काम कर दिया।
मैंने कई मरतबा आपसे कहा आए साथ बैठकर बात करें, आप नहीं आए। मैंने भी केस को अदालत में पेश कर दिया।
मैं आज ही कोर्ट से ऑर्डर कैंसिल कराता हूं। क्या सोचा
आज था से यहां काम बंद है, आप अपने काम निपटाने के लिए कोर्ट जाएं।
ठीक है जनाब, हम कोर्ट जाएंगे। ये लोग वहां जब्त करना चाहते थे, कर लिया। आप लोग अपने काम पर जाएं। जाइए
आरश, बस करो, बहुत हो चुकी बेइज्जती। काम बंद है भाई, जाओ।
क्या मतलब है बंद है भाई?
एक बार फोन करो उसके भाई को।
10 बार फोन किया है, जवाब नहीं देता है।
वो यहां से भागा तो होगा नहीं, बहरहाल किसी कब्रिस्तान में होगा। फोन करो अपने अब्बू की दुकान पे।
तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो?
अरश, अभी मेरे साथ बहस मत करो, समझे? फोन करो।
मैंने फोन किया था ना, अब्बू ने उसे बैंक का काम निपटाने के लिए भेजा है। तुम बेवजह बात को उलझा रहे हो, मसला बना रहे हो। अरे भाई वो अभी नहीं भागा है।
वाह मजीद साहब, पता है तुम कहाँ हो?
तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? फोन क्यों नहीं?
अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो?
रुको बदजात, मैं कहता हूँ रुको।
छोड़ो मुझे पागल।
तुम्हारा बदजात भाई कहाँ है?
मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है। कल वो हमारी माँ के पास आए थे, उन्हें कुछ पैसे दिए और चले गए।
अगर मालूम नहीं तो भाग क्यों रहे थे?
उस पर हमला कर दिया तो क्यों मैं खड़ा होकर देखते रहता? जाओ यहाँ से पागल कहीं के, जाओ हटो पागल लोग।
नसीब अच्छा होगा अगर सच बोला होगा तो।
अरे चले जाओ।
इन लोगों को जो करना था कर चुके, हमारे बारे में अब कोई फायदा नहीं है।
अचानक कैसे कैसे हो गया?
मुझे नहीं मालूम, वाकई मुझे नहीं मालूम। मैंने बुरी तरह से इस प्रोजेक्ट पर एतबार किया था। उसी इब्तिदा में ही जिस चीज के बारे में एतबार करता था अचानक सब खराब हो जाता था।
हमें पहले ही मकसूदी के पास चले जाना चाहिए था, कुछ पैसे देकर मामले को रफा दफा करा देना चाहिए था।
आरश तुम मुझ पे एक एहसान करो, अब मेरी इजाजत के बगैर कोई गलत हरकत मत करना। जब भी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तुमने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर दी है।
अब मैं क्या जानूं?
अब अब्बा हुजूर को क्या जवाब दूं? उनकी बात 100 बार मेरे जहन में दस्तक दे रही है।
मेरे अब्बू भी मुझे कोसने के लिए हर बहाने ढूंढते
रहते हैं। मुरादी को लगता है तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ नथी कर दिया है।
मुरादी को मेरे अब्बू ने बड़ा बना दिया है, वो हमें धोखा नहीं दे सकता।
फिलहाल तो उसने धोखा दिया है, तुम खुद को धोखे में मत रखो, वो भाग गया है।
इस कदर बदगुमानी मत करो।
बेवकूफ बना रहा हूं कैसा रहेगा?
जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, मेरे अब्बू ने हमेशा इस प्रोजेक्ट में हमारी हिमायत की है। तुम पर मैं एहसान नहीं जताना चाहता, अब्बू नहीं होते तो ये प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होता। बताओ हो सकता था?
तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो?
तो बोलो फिर कहां जाऊं?
चलो चलते हैं तुम्हारे अब्बू के पास, मुरादी को उनके संदूक से निकालने के लिए। हम मुरादी को बिल्कुल नहीं जानते थे, हमने आपके आत्मात पर उनके साथ मामला किया था।
मैंने पहले ही दिन तुम लोगों से कहा था कि काम के तमाम पहलुओं का जायजा लो, मैंने नहीं कहा था?
हाँ लेकिन जी अब्बू आपने कहा था, लेकिन बताइए अब हम क्या करें?
मुझे क्या मालूम मेरे बेटे, तुम लोगों के इस तसाहुल ने बाजार में मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए?
दाऊद साहब आपने पहले दिन मुझसे नहीं कहा था कि आप इस लड़के को जानते हैं, ये अच्छा आदमी है? आपने ये नहीं कहा था कि वो आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत कश आदमी है? आपने कहा था या नहीं कहा था बताइए? कहा था ना
भाई। जिस वक्त मैं उसको जानता था वो सही आदमी था, मेहनत कश था, अपनी एक साख बना रखी थी उसने। उसके माथे पर तो नहीं लिखा हुआ था कि अंदर से ये अच्छा नहीं है। अब इस मसले का हल तुम लोगों को खुद जाकर करना पड़ेगा। 100 लोगों ने सुबह से अब तक मुझसे पूछा है आप नुमा का मामला क्या है, मैं लोगों को अच्छी तरह से जवाब नहीं दे सकता।
ये क्या बात हुई, हम यहाँ हैं आपसे मदद मांगने के लिए।
तुम लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं वही करूँगा।
मिर्जाई साहब आपने खुद
मोहम्मद हुसैन, मसले की राह हल तुम्हें खुद ढूंढनी होगी। तुम्हें कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तरफ से मुकम्मल वकालत हासिल थी, सब कुछ तुम्हारे अपने हाथ में था।
ये कौन था जो हर मिनट पर मुझसे कहता था कि तुम्हें खुद मैदान के बीच में रहना पड़ेगा? कौन मुझसे कहता था कि आरश को हर काम के बीच में मत डालो, वो काम खराब कर देता है?
क्यों अबू आपने कहा था?
बेजा बातें मत करो मेरे बेटे।
बेजा बात है? क्या आपने मुझे जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए कि आप चाहते थे कि अगर कोई मसला पेश आए तो आपका बेटा बीच में ना फंसे? अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताइए। भरोसा है भरोसा है कहा करते थे यही है।
पहली बात तो ये कि तमीज से बात करो। दूसरी बात, मैंने तुम लोगों से कहा था जो भी करोगे तुम उसके खुद जिम्मेदार हो, तुम दोनों। अगर मैंने कहा कि आरश को बीच में मत घसीटो उसके तजुर्बे की कमी की वजह से था। असल में मैं चाहता था वो तुम्हारे साथ रहकर काम सीखे। क्या मैंने गलत कहा था आरश बेटे? मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ।
मैंने सुन रखा था कि इंसान ऐसे शख्स से धोखा खाता है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता, तो मैं यकीन नहीं करता था। आपकी बड़ी मेहरबानी।
ये क्या काम था जो इस लड़के ने कर दिया? लेकिन अब क्या होगा?
आज तो वर्कशॉप को सील कर दिया गया है, इसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या होगा।
मैं इस मामले की इब्तिदा से ही परेशान था और अब भी परेशान हूँ।
मोहम्मद हुसैन का है, मैं क्या करूँ?
बात करो, उठाओ, देखो क्या बोलता है।
हेलो।
सलाम।
सलाम।
तुमने खबर सुन ली?
हाँ।
पता नहीं, एकदम सब कुछ दरअसल पर हम
क्या? मुझे तो असली तौर पर मालूम नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तो सभी बातों से बेखबर थी।
घर नहीं आना चाहती हूँ मैडम, मैं अब टूट चुका हूँ।
बड़ी हद तक इस काम की कानूनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।
मैडम मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, घर वापस आ जाऊँ।
मुझे हाल ही में मेरी अम्मी मिल गई हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन उनके पास रहूँ। यहाँ तक तुमने खुद सोचा है, इसके आगे भी तुम खुद ही सोचो। खुदा हाफिज।
आगा साहब, लोग मोहम्मद हुसैन की शिकायत लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। अब चलिए, एहतियात कीजिए, आइए। हाँ। ध्यान से आइए, चलिए आइए।
सलाम अलैकुम।
सलाम हाजी साहब।
सलाम।
ये लोग
माफ कीजिएगा हाजी साहब, हमने ज़हमत दी।
मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
हाजी साहब, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हमने अपने बरसहा बरस की जमा पूंजी को मोहम्मद हुसैन साहब के प्रोजेक्ट में डाल दिया। अब हमें पता चला कि हमारी पूरी पूंजी बर्बाद हो गई है।
अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ?
आप अपने साहबजादे से बात करें, कम से कम वो हमारे पैसे ही वापस कर दें। हमें अब घर की जरूरत नहीं है, हमें अपने पैसे वापस चाहिए।
मैंने इब्तिदा से ही मोहम्मद हुसैन को खबरदार किया था कि इस बात का ख्याल रखे कि लोगों का हक पामाल ना हो जाए। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, शहीदों के खून का पहला कतरा उसके तमाम गुनाहों का कफवारा होता है सिवाय हक उन्नास के।
हाजी साहब, आप जब हमारे साथ मुवाफिकत करते हैं, कह दीजिए कि जल्दी हमारा असल पैसा लौटा दें, मुनाफा हमें नहीं चाहिए।
दर हकीकत आपके सामने दो राहें हल है। पहली ये है कि आप आज ही तशरीफ ले जाएं और मोहम्मद हुसैन के खिलाफ शिकायत करें। दूसरी सूरत यह है कि आप हमें कुछ दिन की मोहलत दें ताकि हम देख लें कि इस मसले का हल क्यों कर किया जा सकता है।
अगर मसला हल नहीं हुआ तो
खुदा पर तवक्कुल करें, तमाम कोशिशें करूंगा कि हल हो जाए, लेकिन अगर हल नहीं हुआ तो आप शिकायत कर सकते हैं।
हाजी साहब, इनमें से कोई भी आपकी इज्जत का ख्याल रखते हुए शिकायत नहीं करना चाहता।
इन्ना माल उसरे यूसरा। साबिर साहब, हजरात, अगर आप जरा साबिर रहें तो इंशाल्लाह आपके लिए उसका मीठा फल जरूर नसीब होगा।
तुम्हें लोगों के काम से क्या सरोकार? चलो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो।
कैसी बात करते हो, ये हमारे उस्ताद हैं हाजी साहब, इनकी परेशानी हमारी भी परेशानी।
खुद हाजी साहब कहते हैं कि हमारा पहला काम पढ़ाई पे ध्यान देना है, ना कि कोई और काम।
खुद आगा साहब ने भी ये बताया है कि हमारी तालीम का नतीजा हमारे रवैये में भी जाहिर होना चाहिए, लिहाजा हमें इस मसले में ला ताल्लुक नहीं रहना चाहिए।
ठीक है, तो मैं खुद ही जा रहा हूँ।
हाँ, तुम जाओ, कल बहस करो, देखते हैं तुम अपने आप को कायल कर सकते हो या नहीं।
ख्याल रहे कि आपस में झगड़ा ना हो।
आगा साहब, मैं हर्षे से आपके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, अपनी इसी 2 रियाल 10 शाही आमदनी की शरई रकम को आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। आगा साहब, मैं क्या करूँ?
साबिर साहब, मैं खुद भी इस बात में हैरान रह गया हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
कैसी बात कर रहे हैं आगा साहब, मैं आपकी तरफ से माफी तलबी सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे तो लोगों की बात से तकलीफ पहुँचती है।
कौन सी बात?
उनमें से बाज़ लोग कहते हैं कि आगा शेख अब्दुल हुसैन के बेटे ने मेरी जबान कट जाए अपने वालिद के नाम से गलत फायदा उठाते हुए गैर कानूनी काम अंजाम दिए हैं। आगा साहब, मेरे लिए ये देखना बहुत नागवार है कि लोग आप और आपके बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल मेरे पास उनको बताने के लिए कोई बात भी नहीं है। आगा साहब, मुझ जैसे अफराद के लिए जो आपका मुरीद है, ये बातें सुनना बहुत नागवार है। खुदा के लिए कुछ करें।
आगा साहब, मोहम्मद हुसैन मियां आ गए हैं।
आगा साहब, मैं अब इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
सलाम।
वालेकुम सलाम। या अल्लाह, सलाम अब्बा हुजूर।
अलैकुम सलाम।
उस दिन से जब से मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, आपने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मेरे दिल में यह हसरत रहेगी कि आप एक मर्तबा वालिद की हैसियत से मेरी मदद करते।
तुम्हें जाकर ऐसे शख्स के साथ मामला नहीं करना चाहिए था जिसको तुम नहीं जानते थे।
मैं उसको जानता था अब्बा हुजूर। मतलब यह कि दर हकीकत हम उसको नहीं जानते थे, दाऊद साहब उसको जानते थे। दाऊद साहब ने हमसे उसका तारुफ कराया था और कहा था भरोसे का आदमी है।
ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटे, आज ही जाकर कोशिश करोगे कि जमीनों को जरी अराजी की कीमत पर बेचकर उसके पैसे जितने बने लोगों को दे दो, अगर कुछ कम पड़ गया तो मोहलत मांगो, देखते हैं क्या होगा।
अब्बा हुजूर माफ कीजिए, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा।
क्या मतलब है कि ये काम नहीं करूंगा? ये हकुन्नास का मामला है। हकुन्नास तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके रख देगा। हकुन्नास को अदा करना हकुल्लाह की अदायगी से ज्यादा जरूरी है।
आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर कोई मसला पेश आए तो मैं सबसे कह दूंगा कि आपको मेरे कामों के बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं था। आप अपनी इज्जत के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो अब्बा हुजूर।
मैं चलूं आपके साथ?
नहीं।
माफ करना मोहम्मद हुसैन, तुम गलती कर रहे हो।
तो क्या इसके अलावा मेरे पास कोई चारा है?
हाँ, चारा है। तुम अपने वालिद मोहतरम की तजवीज मान लो, लालच छोड़ दो और लोगों के पैसे दे दो। अरे भाई, उनके पैसे देकर बेफिक्र हो जाओ। तुमने सुना ना कि तुम्हारी जिंदगी में हक को नास हो तो इसी दुनिया में उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद हुसैन, तुम अपने बाप का दिल खुश कर दोगे तो यकीन करो खैर बरकत तुम्हारे नसीब में होगी।
अहमद अली साहब, वह जमीने तो आसान है, मैं अगर अपनी पूरी जमा पूंजी भी दे दूं और खुद को भी फरोख्त कर दूं तब भी मैं लोगों का मकरूज रहूंगा। इस पैसे का ज्यादातर हिस्सा उस कमीने मुरादी के पास है जिसने हमें धोखा दिया है।
तुम कदम तो बढ़ाओ, खुदा बरकत देगा। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। ये एक जमीन के पुराने कागजात हैं, मैंने इनको रख लिया था बरात अली की शादी पर बेचने के लिए, लेकिन वो तो नालायक निकला। भाई, इसको बेचकर अपनी जरूरियात पूरी करो। ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन कुछ तो काम आएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जाओ।
लेकिन सच बात यह है कि हमारा मसला इन पैसों से हल नहीं होगा।
अरे भाई, तुम पर कर्जा है कितना?
बहुत ज्यादा।
इंजा